मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFAIS के आज 8 मई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने एक मित्र अनमोल जौहरी का जो फरीदपुर उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी के 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और इस महत्वपूर्ण सूचना का संबंध इस बात से है कि लगातार मुझे ढेर सारे मेल हम लोगों को मिल रहे थे कि सर आप हर साल प्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो करेंट टॉपिक्स होते हैं उनके क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहे ऑब्जेक्टिव टाइप पर और इस बार वो क्वेश्चन अभी तक नहीं मिले हैं, प्लीज़ जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कीजिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब जो मैं सूचना देने जा रहा हूं उसका संबंध इसी से है और सूचना यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो ऐसे क्वेश्चन या ऐसे टॉपिक जिनके प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है लेकिन जो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है, याद रखिए करेंट अफेयर्स मत भूलिएगा, करेंट अफेयर्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो प्री 2020 के एग्जामिनेशन में आने की संभावनाओं से भरे हुए होते हैं उसके 5 मॉक टेस्ट हम लोग अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। 5 मॉक टेस्ट ये फ्री हैं, एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन हैं और टोटल 250 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इन्हें आप हमारी जो वेबसाइट है afis.com इस पर जाकर के देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारा जो ऐप है उस पर भी ये मॉक टेस्ट डाल दिए गए हैं। तो दोस्तों आप सब इनका भरपूर लाभ उठाएं, बहुत इत्मीनान से इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें और साथ ही साथ जो टॉपिक बताए गए हैं इसके तहत जो टॉपिक आ रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दें और ये मान करके चलें कि ये टॉपिक 2020 के प्री एग्जामिनेशन के लिए थोड़ी सी ज्यादा वजन रखते हैं, थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ दूसरी सूचनाएं भी आपको देता हूं। शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा लेकिन कल आप लोगों को प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगे और साथ ही साथ एक वीकली क्वेश्चन भी मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों आज के मुख्य विषय की शायद आप लोगों ने कल्पना कर ली होगी, विशाखापट्टनम में जो गैस रिसाव हुआ है, गैस दुर्घटना, इस पर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। लेकिन इनफैक्ट आज मेरे पास आप सबसे बातें करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं तो देखिए इस विषय पर हम लोग कितनी बातें कर पाते हैं और अगर कुछ शेष रह जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर हम आगे देखेंगे क्योंकि जो दूसरी घटनाएं हैं वो भी मुझे थोड़ी सी महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही हैं जिनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बातें की जानी चाहिए। तो दोस्तों वंदे मातरम मिशन के बारे में आप सब जानते हैं कि विदेशों में हमारे बहुत से लोग फंसे हुए हैं COVID-19 के कारण, तो भारत सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की है वंदे मातरम मिशन और इसके तहत विदेशों में जो हमारे लोग अभी रुक गए हैं, फंस गए हैं, उनको वहां से निकाल करके अपने देश यानी कि भारत में लाने का अभियान शुरू किया गया है। तो बस इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो मैं नहीं सोचता हूं कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इतनी ऑब्वियस हो जाती हैं वो पूछी जाएंगी, लेकिन जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं उनमें पूछे जाने की थोड़ी संभावना बनती है। न्यूज़ में आपने सुना होगा कि हमारे मंत्री जो गडकरी जी हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा की है, वो ये है कि 2 साल के अंदर लगभग 15 लाख करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। दोस्तों 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपये, इसे आप दो एंगल से देखिए। देखिए घटना इंपॉर्टेंट नहीं होती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, है ना, इंफॉर्मेशन को याद कर लेने से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं होती है, आपको यह जानना होगा कि इसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। तो सलमा सितारे की तरह है, जैसे आप देखिए कि साड़ी होती है ना, फिर साड़ी में जो है सितारे उतारे जड़ करके उसे खूबसूरत बनाया जाता है, तो जो इंफॉर्मेशन है तो सलमा सितारे की तरह आपको साड़ी में जड़ करके उसे खूबसूरत रूप देना पड़ेगा। इसका देखिए आपको दो पक्ष आपके इसके साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला तो यह कि सरकार 15 लाख करोड़ रुपए कह रही है कि चूंकि अब अर्थव्यवस्था कितनी ध्वस्त होती चली जा रही है कोविड-19 के कारण, तो यह कि 15 लाख करोड़ रुपए हम इसके माध्यम से पब्लिक को उपलब्ध करा देंगे, है ना। अब जब सड़क निर्माण होता है तो आधारभूत संरचना है, तो देखिए कितने सारे उद्योग इसके साथ ही चल निकलेंगे। सड़क निर्माण के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए, ऊपर से लेकर के जो हमारा औद्योगिक उत्पादन है से लेकर के नीचे तक के मजदूर चाहिए, तो वहां तक 15 लाख करोड़ रुपए 2 साल में लोगों तक पहुंच जाएगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। तो जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो डिमांड जनरेट होगी तो औद्योगिक उत्पादन और तेजी से बढ़ेगा, तो अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। दूसरा यह है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा हमारा, जो औद्योगिक विकास के नींव होती है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं बहुत खराब हैं, हम औद्योगिक उत्पादन के या औद्योगिक विकास में इसलिए पीछे रह जाते हैं, या विदेश के लोग इसलिए हमारे यहाँ निवेश करने से हिचकते हैं क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। और देखिए कि जो अमेरिका है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसने यही किया था, और खासकर उससे पहले भी उसने शुरू कर दिया था कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, उसने खूब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और आज अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया। तो इस तरीके से ऐसी जो सूचनाएं होती हैं जब भी आपको मिले तो थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए कि इसका इस्तेमाल आप कहां कहां कर सकते हैं, तभी एग्जामिनेशन हॉल में फट से आपके दिमाग में वो चीजें आ पाएंगी, अदरवाइज नहीं आ पाएंगी। दोस्तों कल जो स्टेटमेंट हमारे ट्रंप महोदय जी ने दिया है, जो बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है और सच पूछिए तो थोड़ा सा अंदर से हिला देने वाला स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो चीन ने हम पर जो कोरोना हमला किया है, हम पर नहीं पूरी दुनिया पर, एक प्रकार से वो उसी तरह है जिस तरह से कि अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था और पर्ल हार्बर का हमला हुआ था। तो 9/11 के बारे में तो आप सब जानते ही जानते हैं, ये कोई बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये आतंकवादी हमला था, है ना, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन सबको ध्वस्त किया गया था। लेकिन दोस्तों जो पर्ल हार्बर की उन्होंने बात कही है, ये बहुत खतरनाक बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए खतरनाक क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन जो सिविल सर्विस की जब हम तैयारी करते हैं तो फिर हमें इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अगर ट्रंप महोदय ने यह कहा है तो सीधी सी बात है कि अब सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इतनी सतर्कता बरतनी होगी कि वो थोड़ा सा पर्ल हार्बर के बारे में जाने कि भैया ये पर्ल हार्बर हमला क्या था। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बकायदे पर्ल हार्बर, जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें पर्ल हार्बर आपको पढ़ने को मिलेगा, बकायदे वहां पढ़ने को मिलेगा। ये पर्ल हार्बर क्या है, आइए थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। यानी हवाई द्वीप में यह एक कह लीजिए अमरीकी नौसैनिक अड्डा था, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था, और आप जब लेक्चर सुनेंगे तो आपको जो मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं आपको पता लगेगा, बहुत क्लियरली उसमें मैंने बहुत विस्तार के साथ समझाया है, बहुत स्पष्टता से और जितनी संभव हो सका है सरल तरीके से। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी अमेरिका नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी अमेरिका शामिल नहीं था, है ना, ये तो एक तरफ जर्मनी इटली ये सब थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन फ्रांस ये सब लड़ रहे थे आपस में, लेकिन अमेरिका की जो सहानुभूति थी वो ब्रिटेन वगैरह के साथ थी, लेकिन वो युद्ध में शामिल नहीं था। अब हुआ क्या कि जो अमेरिकी नौसैनिक अड्डा ये जो था पर्ल हार्बर, जापान ने इस पर अटैक कर दिया, यहां डेफिनेटली जो अमेरिका थे उनके जहाज खड़े थे और लड़ाकू जहाज खड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो जापान भी थोड़ा सा सशंकित था और उस समय जापान पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। तो एक तरफ आप देखिए कि जापान और अमेरिका के बीच में इस बात पर बात हो रही कि प्रतिबंधों को कैसे समाप्त किया जाए, और फिर दोस्तों 7 दिसंबर की सुबह 8 बजे, दिन था रविवार, जापान के विमानों ने पर्ल हार्बर पर जो जहाज खड़े थे, देखिए जब जहाज कहते हैं तो पानी का जहाज होता है ना, विमान कहते हैं तो हवा में उड़ने वाला होता है, ध्यान रखिएगा, उन पर बमबारी की, और बमबारी करने के बाद उसके कई युद्ध पोत तबाह कर दिए, कितने विमान तबाह कर दिए, और लगभग 2500 जो अमरीकी सैनिक थे वो भी मारे गए। जब अमेरिका ने ये देखा तो बस वो तिलमिला उठा, और इसके बाद वो युद्ध में शामिल हो गया, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से युद्ध में शामिल होना था। आपको मालूम है कि जापान जर्मनी इटली अलग एक तरफ थे, तो अब जापान के विरोध में शामिल होना है तो ब्रिटेन फ्रांस की तरफ, वैसे भी सहानुभूति इसकी थी। और देखिए कि यहां जो घटना आप सोचिए कि दिसंबर 1941 में जापान ने घटित की थी, 1945 में फिर इसका बदला अमेरिका कैसे लेता है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर। तो दोस्तों कैसे इतिहास बदला लेता है, तो यह है पर्ल हार्बर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है मित्रों, अब हम आते हैं थोड़ी सी एक दूसरी बात पर। मैं आज आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं राजदीप सरदेसाई का। इसकी शुरुआत का जो अंश है आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे अंशों का उपयोग हम निबंध में कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। अब वक्त नहीं है कि इसका कैसे आप उपयोग करेंगे, हो सका तो मैं आगे आप सबसे बात करूंगा। खासकर जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस में बैठ रहे हों या मध्य प्रदेश की दूसरे एग्जामिनेशन में। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं दो बिंदुओं को लेकर के। एक तो ये है कि जो लघु एवं जो मध्यम दर्जे के उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको राहत देने के बारे में बात की है, और दूसरा श्रम सुधारों में भी सुधार करने संबंधी उसने आदेश दिए हैं। और ये मध्य प्रदेश ने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो कह लीजिए किस तरह की घोषणाएं करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो खासकर जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट और स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि इस पर वो थोड़ा सा ध्यान दें। आज के अखबारों में मुझे लगता है कि उन्हें ये बातें पढ़ने को मिल जाएंगी। चूंकि वक्त मेरे पास इतना नहीं है कि मैं इन पर डिटेल में बता सकूं मित्रों, तो इसलिए इसके लिए क्षमा चाहूंगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी हो गई। जब हम विशाखापट्टनम की गैस त्रासदी को सुन रहे हैं तो भोपाल में जो 1984 में गैस त्रासदी हुई थी यूनियन कार्बाइड की, वो अचानक दिमाग में सामने आ जाती है। दोस्तों, ये जो विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी हुई है डेफिनेटली एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, औद्योगिक घटना है, औद्योगिक त्रासदी है, और ये बकायदे हमारी जो आपदा है उस आपदा में आती है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उस डिजास्टर मैनेजमेंट का एक हिस्सा यह भी, औद्योगिक दुर्घटना भी उसके पार्ट है। जैसे कि अभी हम COVID-19 को राष्ट्रीय दुर्घटना मान करके, आपदा मान करके चल रहे हैं। अब आप देखिए कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे तो इसके दो भाग हो जाते हैं। एक प्री हो जाता है कि प्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और दूसरा हो जाता है कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब जैसे प्री में अगर हम जानना चाहें, चूंकि अभी प्री एग्जाम है, तो इसमें कौन सी गैस रिसी, निकलने वाली गैस क्या थी, गैस का नाम है स्टीयरिन, ठीक है, स्टीयरिन। अब ये जो गैस है, इस गैस का विकास कब हुआ, किसने किया, थोड़ा सा इसे जान लीजिए क्योंकि साइंस का पार्ट हो जाता है। तो सन 1839 में एक जर्मन के वैज्ञानिक हुए थे स्टुअर्ड साइमन, उन्होंने अमेरिका में एक पेड़ होता है स्वीट गम, मतलब गम का मतलब तो होता है आप जानते हैं गोंद, स्वीट गम का यानी है मीठा गोंद। तो एक पेड़ है जिससे मीठा गोंद निकलता होगा, उससे निकाली थी राल, यानी कि उसका जो जमा हुआ पार्ट होता है, और उससे वाष्पशील तरल पदार्थ बना करके इसका निर्माण किया था। तो थोड़ी सी आपको इसकी जानकारी मिल गई। ये किस काम में आता है, तो जो कृत्रिम रबड़ बनाया जाता है, जो रेजिन बनाया जाता है, उसके बनाने में इसका उपयोग होता है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको इसकी मिल गई। ये जो प्लांट था, ये प्लांट क्या था, तो इसका नाम था एलजी पॉलीमर प्लांट। ये किस देश का था, तो दक्षिण कोरिया का था। तो ये सामान्य सी जानकारियां हैं जो आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए, और चूंकि ये तथ्यात्मक है तो यहां आप अनुमान कुछ भी नहीं लगा सकते, है ना। तो बेहतर होता है कि हम कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, तो उसे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी मुख्य परीक्षा का पार्ट क्या है, इसकी मुख्य परीक्षा का पार्ट है कि क्यों भारत में इतनी ज्यादा इस तरह की दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। क्योंकि देखिए, ये जो दुर्घटना घटित हुई है ये तो बहुत बड़ी घटना घटित हो गई है, तो अखबारों में है। इसी दिन छत्तीसगढ़ के भी बकायदे एक पेपर मिल में गैस रिसी है उसमें, और इसी तरह से नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन है उस प्लांट में भी कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। तो होती रहती हैं छोटी छोटी घटनाएं। तो अब मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से होता है कि भाई ज्यादातर भारत में ऐसी दुर्घटनाएं क्यों घट रही हैं, भारत को इसके बारे में क्या उपाय करना चाहिए, क्या भारत के पास इससे संबंधित कोई कानून और व्यवस्था है। जब आप इस पर थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़े से पॉइंट्स नोट कर लेंगे, तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप ज्यादा तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात कह सकेंगे। जैसे हमारे पास बकायदे इस पर एक रूल्स है, उसका नाम है मैन्युफैक्चर, शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल रूल्स 1989। यानी कि अगर आप बनाते हैं, संग्रहण करते, स्टोर करते हैं और इम्पोर्ट करते हैं, कौन सी चीज, हैजार्डियस केमिकल्स, यानी कि जो बहुत ही खतरनाक किस्म के जो रसायन पदार्थ होते हैं, चाहे आप इन्हें बनाएं, चाहे आप इनका स्टोरेज करें, चाहे आप इनका आयात करें, इससे संबंधित रूल्स 1989। और इसमें बकायदे वो सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि जब इस तरह के प्लांट लगेंगे तो उन्हें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो सावधानियां बरती नहीं जाती हैं और उसी के नतीजे में यूनियन कार्बाइड का मामला हुआ था और उसी के नतीजे में हम यहां विशाखापट्टनम की गैस दुर्घटना का भी मामला होता हुआ देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य विषय के बारे में बातें थी। इसके बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स में दैनिक जागरण में मेरा एक लेख छपा है, आप लोग उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और उसके शुरुआत में मैंने कुछ संदर्भ दिए हैं। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगा कि शुरुआत में मैंने कुछ दिया है, कविताओं का अंत और इतिहास का अंत। अगर आप उन्हें नोट कर लेंगे तो निबंध के लेखन में वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। आज बहुत लंबी लिस्ट है अच्छे ईमेल लिखने वाले मित्रों की। गौरव कुमार रामनगर बिहार से, गौरव साव पुरलिया वेस्ट बंगाल से, इमरान खान मवाना उत्तर प्रदेश से, कौशल किशोर समीर कुमार औरंगाबाद बिहार से, आशुतोष शुक्ला इलाहाबाद से, सैफ अहमद अनूप राज पवन चौधरी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, प्रीति पाठक अखिलेश्वर राज बिहार से, अर्जुन कुमार अनामिका विमल, सगुना श्रीमाली निधि मीना, प्रणव राज अंशिता मेघराजानी भोपाल से, अफसार रजा लखनऊ से, हिमांशु गोयल और कृष्णा घोष कोलकाता से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले आप सब के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। दो दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।